रामिया प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 नवंबर 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में आता है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन तो कहते हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पाप में वेदस्मान हतान आतताई न, इन आतताइयों के मारने से पाप ही लगेगा और क्या हाथ लगेगा, पाप लगेगा, युद्ध करने से पाप लगेगा। और भगवान कथा अतिचेत तुम इमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति से हित्वा पाप मवाप्स्यसि। अगर युद्ध नहीं करेगा तो फिर वो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, गुरुओं को मारने का, भगवान के युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तो इस पाप से छुटकारा कैसे हो? तो इसका उपाय भगवान बताते हैं कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो, जय पर जय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर तुम युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। अब जय पराजय हानि लाभ और सुख दुख इनको समान करके युद्ध करो तो सुख दुख को समान कैसे समझा जाए, ये प्रश्न है। अब विचार कर आप शांति से बात सुने। सुख दुख समान कैसे है? तो सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, दोनों बातें। सुख आता है तो अच्छा लगता है और सुख चला जाता है तो बुरा लगता है, और दुख आता है तो बुरा लगता है जाता है तो अच्छा लगता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? एक तो आता हुआ बुरा लगता है, एक जाता हुआ बुरा लगता है, एक आता हुआ अच्छा लगता है, एक जाता हुआ बुरा अच्छा लगता है, दोनों बराबर तो हुए। वो फिर कह देता हूं ध्यान दो, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, एक जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है, एक जाता हुआ अच्छा लगता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ बताओ? सुख दुख को समान करना के समान कैसे हो, समान है इस वास्ते हो, एक आता हुआ अच्छा लगे एक जाता हुआ अच्छा लगे, आता हुआ बुरा लगे एक जाता हुआ बुरा लगे, तो अच्छा और बुरा दोनों लगते हैं बरोबर, तो समान तो है ये। आप सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते, इस वास्ते फर्क है। ये तो बरोबर है दोनों ही, आता हुआ सुख अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो एक तरफ आना बुरा है, एक तरफ जाना बुरा है, एक तरफ जाना अच्छा है, एक तरफ जाना बुरा है, तो बरोबर हुए ना दोनों ही। कहते दोनों तो केवल तो फर्क लगता है, तो फर्क लगता है तो दोनों समान कैसे हो, ये एक प्रश्न है। तो जितने द्वंद्व है उनको समान कैसे समझे, ये प्रश्न है। तो कैसे कैसे समझे, समान है इसे समझे। देखो जो आदमी सुख दुख सुख चाहता है दुख नहीं चाहता है, उसके लिए समान नहीं होते। समान नहीं होते इसलिए ही उपदेश देते हैं कि तुम समान समझो। कहते यही तो प्रश्न है, समान समझे कैसे है? तो समान है ये बात तो मैंने बता दी। अब दूसरी बात बताता हूं। जैसे हम बद्रीनाथ जा रहे हैं और बीच में रास्ते में बड़ा सुखदायी रास्ता मिले, बदल की छाया आ गई, वृक्षों की छाया आ गई और सीधा सरल रास्ता है, थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, हवा चल रही है, जंगल में उधर फुलवारी है, उस फूलों की सुगंध आ रही है और चल रहे हैं, तो सुख होता है। अगाड़ी चले तो चढ़ाई आ गई, बदल दूर हो गए, घाम तपने लगा, हवा लगती नहीं, कहीं लगती है तो यात्रियों के मैला फैलाने से दुर्गंधि आ रही है। तो रास्ता तो चढ़ाई का आ गया, घाम तेज हो गया, दवा हवा बंद हो गई, बहुत कम हवा आती है, दुर्गंधि आती है। तो हमें सुगंधि दुर्गंधि लेना है कि बद्रीनाथ जाना है, तो हमें बद्रीनाथ जाना है, ना तो सुख लेना है ना दुख लेना है। क्या आराम का रास्ता मिले तो वहां बैठ जाए आराम में, और दुख मिले तो क्या घबरा करके जाना बंद कर दें। हमें बद्रीनाथ जाना है, रास्ते में सुख दुख से हमें मतलब क्या है। सुख में आ जाकर भी ऐसा चढ़ाई आ गई, घाम तप रहा है, दुर्गंधि आ रही है, थके हुए हैं, परंतु हमें वहां दुख लेना नहीं है ना सुख लेना है। सुख देख करके तो वहां बैठना नहीं है और दुख करके घबराना नहीं है, क्योंकि हमें तो बद्रीनाथ जाना है, सुख देना है ही नहीं। तो संसार में जो रहना चाहते हैं उनके लिए तो सुख बड़ा अच्छा है और बुरा दुख बुरा है, परंतु जो संसार से ऊपर होकर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो उनके बीच में सुख आवे चाहे दुख आवे, न ठहरने वाला सुख है न ठहरने वाला दुख है, बिल्कुल अनुभव है आपके सबके भाई बहनों के। ये अनुभव की बात है, क्या सुख निरंतर रहता है, क्या दुख निरंतर रहता है, न सुख निरंतर रहता न दुख निरंतर रहता। तो वे तो आते जाते हैं, आलमा पाए नित्यास्ते भारत भगवान कहते हैं आज्ञा में कि मात्रास्पर्शास्तु कौन थे या शीतोष्ण सुख दुख दा, यही सुख दुख शब्द है वहां। ये विषयेन्द्रिय संबंध है, ये कोई सुख देने वाले है कोई दुख देने वाले है। मात्रास्पर्शास्तु कौन थे या शीतोष्ण सुख शीतोष्ण मन अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुखदा सुखदायी और दुखदायी है। परंतु सुखदाई दुखदाई होते हुए भी आगमा पाई ना, आने जाने वाले, सुख भी आने जाने वाला, दुख भी आने जाने वाला, और अनित्य रहता है, जो ना सुख रहता है ना दुख रहता है। तो हमें सुख दुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं मिला है, मानव शरीर मिला है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। तो हमारा लक्ष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, चाहे तत्व ज्ञान हो, चाहे परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाए सगुण विषय में, और निर्गुणता तत्व साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए हम जब चलते हैं तो सुख दुख में कैसे अटकेंगे। जैसे बद्री नारायण जा रहा है, वो सुख दुख में कैसे अटकेगा, वो रहने वाले में यहाँ रहना दुखदाई है तो और जगह चलो, जहाँ सुखदाई है वहां रहेंगे। तो ये तो संसारी आदमियों की बात है, वे भी सुख दुख में स्थिर नहीं रहते, केवल रोते हैं हंसते हैं, ये थपेड़ा लगाते हैं, इधर थपेड़ लगा, इधर कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो ये तो पशुओं में आता है, पक्षियों में आता है, कुत्ते हैं, गऊ है, गाय है, गधा है, ऊंट है, भैंसा है, इनको भी आता है, वे भी सुखी दुखी होते हैं, और हम भी सुखी दुखी होते रहेंगे, तो हमारे में फर्क क्या है। सुख दुख का ज्ञान बाधक नहीं है, सुख दुख का भोग बाधक है। तो सुख का भोग भी बाधक है, दुख का भोग भी बाधक है। अगर हम भोगी नहीं, हम तो योगी हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तो हम भोगी नहीं है। तो आप अपने को योगी समझे तो फिर सुख दुख आपके समान हो जाएंगे, क्योंकि सुख ठहरने वाला, दुख ठहरने वाला, दुख ठहरने वाले नहीं है। हम जिस योग को चाहते हैं वो समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है। तो समता स्थावरों में भी होता है, वृक्षों में भी होता है, पशु पक्षियों में होता है। तो हम ही उसमें अगर भोगी बन जाएंगे तो हमारी संज्ञा पशुओं की तरह ही हुई, हमारी अवस्था वही हुई। तो हम सुख दुख के भोगी नहीं है, हम योगी है। योगी होता है वो सुख दुख में घबराता नहीं। जैसे भोजन न मिलने से श्रद्धा शक्ति हमारे में चलने फिरने की वो शक्ति कम हो जाती है, तो फिर जो ये उपवास करते हैं, निर्जल एकादशी करते हैं, कई कई सज्जन प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं, जल भी नहीं लेते, और तो फरार तो दूर रही। एक सज्जन मिले थे, वो प्रत्येक एकादशी निर्जला किया करते थे, तो वो कहते मेरा शरीर बड़ा अच्छा रहता है, 15 दिनों से एक दिन उपवास करने से शरीर अच्छा रहता है। जैसे काम करने वालों को एक छुट्टी मिलती है तो उस दिन आराम करते हैं, ऐसे हमारे आंतों को भी एक दिन छुट्टी मिल जाए, केवल हलचल करनी नहीं पड़ेगी, तो इसे ताजगी आती है, ठीक रहता है। तो भूखा रहने से रोजाना भोजन करे जैसी शक्ति वैसा उत्साह नहीं रहता, भूखा रहने से ताकत कम होती है उस दिन। क्या फिर एकादशी छोड़ देते हैं, क्या व्रत छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं देते हैं। सज्जनों ध्यान देकर आप लोग सुने, जिस दिन भूखे रहते हैं उस दिन मन में उत्साह रहता है, प्रसन्नता रहती है। कई कई तुलसी तेला करते हैं, 3 दिन तक भूखे रहते हैं, कई भीष्म पंच भीखा 5 दिन भूखे रहते हैं, जैनी लोग 20-21 दिन भूखे रहते हैं, शक्ति नहीं रहती, पड़े रहते हैं पर दुखी नहीं होते हैं। 5 दिन भूखे रहे तो क्या भोजन करते समय जैसी शक्ति रहती है, 5 दिन भूखे में वैसी शक्ति रहती है। शक्ति न रहने पर भी मन में दुख नहीं होता है, मन में प्रसन्नता होती है क्योंकि हमने व्रत किया है। जैन लोग भी कई कई दिन भूखे रहते हैं, उसको भी तपश्चर्या कहते हैं। मैं तपसी में था, उस समय में तपस्या में था मैं, ऐसी हमारे साथ बातें हुई है। मैं ऐसे तपस्या में था, तपस्या मानते हैं। तो खाने में तपस्या नहीं है न खाने में तपस्या है, तो दुख में तपस्या है और भोजन करने में तपस्या नहीं है, तो दुख आते हैं वो तपस्या है और सुख आते हैं वो भोग है। तो तपस्या में आनंद ज्यादा आना चाहिए भोगों की अपेक्षा। भोगी तो सब जंतु हैं, तपस्वी तो वही श्रेष्ठ पुरुष है जो बहन भाई तपस्या को अच्छा मानते हैं। सांद्राण व्रत करते हैं तो 15 ग्रास लिया, फिर 14, फिर 13, फिर 12, ऐसे एक तक पहुंचे, एक से एक लिया, दो लिया, तीन लिया, 4, 15 तक पहुंचे। तो एक महीने का सांद्राण व्रत होता है, तो व्रत करने से रोजाना जैसी शक्ति नहीं रहती, पर उस नाताकृति में एक आनंद होता है कि हमने सांद्राण व्रत कर लिया। तो इस तरह से दुख में आनंद ज्यादा आना चाहिए क्योंकि वो व्रत होता है। एक तो व्रत दो तरह का होता है, ध्यान से सुना आप, दो तरह का व्रत होता है। एक व्रत हम करते हैं और एक व्रत भगवान कराते हैं। ये दो है तरह के व्रत, एक तो हम जान करके भूखे रहते हैं और एक हमारे को अन्न मिलता नहीं है और भूखे रहते हैं। भूखे दोनों हैं, अन्न नहीं मिलता भी भूखे हैं और नहीं खाते तो भी भूखे हैं। परंतु नहीं मिलता है उसमें हम दुखी हो जाते हैं और नहीं खाते हैं उसमें राजी जाते हैं, तो बरोबर कैसे हुआ? बरोबर नहीं, दुख बढ़िया होता है। भगवान क्या कराया हुआ दुख है, बहुत बढ़िया होता है। हम अपने बीमारी के लिए और जान करके हम अपने पथ्य कुपथ्य का विचार करें, और एक हम अच्छे वैद्य के हाथ में हों और वे पथ्य और कुपथ्य का विचार करें। तो हम पथ्य का कुपथ्य का विचार करेंगे तो गलती कर लेंगे, पर तो अच्छे वैद्य होंगे वे गलती नहीं करेंगे। वे पथ्य कुपथ्य दोनों को आप कराएंगे, दोनों में आपका निरोग होना होगा। इस तरह से आप जो सुख दुख आता है वो भगवान का बनाया हुआ है, तो वो दुख है वो तपस्या भगवान की नहीं हुई, हम करते हैं हमारा किया हुआ तप होता है। तो हमारे किए हुए तप की अपेक्षा भगवान का दिया हुआ तप है बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा उत्तम होता है, ऊंचे दर्जे का होता है। तो जो दुख आ जाए तो भगवान ने हमें तपस्या कराई थी, ऐसा सोचना चाहिए, मस्त होना चाहिए। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम हम बहुत वर्षों से जाते हैं, 60 वर्षों से ऊपर हो गए हम जाया करते हैं। एक साल देंगे नियुक्त प्रतिवर्ष जाते ही है, कभी जरा न होता है तो बहुत कम हुआ है, प्रतिवर्ष जाते हैं। तो अब तो वह भवन में भी सत्संग होने लगा है, बहुत से भाई जानते हैं इस बात को। 12 महीना वैशाख जेठ अषाढ़ आदि तक सत्संग होता है। अब आप ध्यान में, पहले क्या होता था कि हम बट वृक्ष था बड़ा, उस वृक्ष के नीचे सत्संग होता था। सुबह की वक्त पश्चिम की तरफ बैठ के, शाम की वक्त में ऊपर और नीचे और दक्षिण के पूर्व की तरफ बैठते थे छाया में, उस छाया में सत्संग होता था। कोई कुछ ऊपर छाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, बट छाया ऐसी होती है कि गर्मी में तो वो शीतल होती है और ठंडी में वो गर्मी होती है। बट की छाया बैठने के लिए बड़ी उत्तम होती है। उसे सत्संग करते थे तो सुबह जल्दी चले गए, सत्संग करने में बैठ गए सब। ये बहनों माताएं अपने अपने घर में से रसोई बनाकर और वहां ही ले आती थी, गंगा जी के किनारे बैठ जाती थी, अपने अपने परिवार के सहित भोजन करते थे। हम लोग साधु थे, वहां जाकर भिक्षा मांग लेते, एक एक रोटी वो दे देते, जहां हमारी पूर्ति हुई बार बार छुपा दिया अपने, ऐसे हम लोग करते थे। कभी कभी ऋषिकेश से साधु ज्यादा आ जाते थे। ऋषिकेश से आने जाने के लिए नौका का प्रबंध था, वहां ऋषिकेश नौके सुबह आ जाए, वो सत्संग करे, फिर दिन भर रहे अथा सत्संग करके चले जाए, ऐसे नौका का प्रबंध था। उस नौका पर कभी संत लोग आ जाते तो साधु ज्यादा आ जाते, ज्यादा आ जाते तो उनको भी भिक्षा देते, तो एक एक फुलका एक एक पराठा लाते थे पक्का, क्यों बाहर भोजन करना है पराठा देते, वो एक एक पराठा साधु साधु हो जाते, ज्यादा ज्यादा हो जाते तो घर वाले तो पा लेते, बहनों माताओं को भूखा रहना पड़ता। अब जंगल में वो कहां से लाई हो रही उतनी रोटी है, तो उतनी रोटी पाकर और कभी कभी न पाकर भूखे रह जाते। तो वहां श्रेष्ठ जी ने एक दिन सत्संग सुनाया, उन्होंने एक दिन बात कही कि देखो जिस दिन संत आ जाए और भिक्षा दी जाए तो भूखा रहना पड़े, यद्यपि वे रोजिना अपने कुटुंब में जितनी रोटी लगे उसे ज्यादा लाते थे पराठा, क्योंकि साधु आ जाए उनको भिक्षा देनी है, इस भाव से ज्यादा लाते थे। बस साधु अचानक बरसात दशा लिया, अलग अधिक आ गए, अधिक एक एक रोटी दे दी, देने पर उनको भूखा रहना पड़ता था। तो वह उनको ये बात सुनाई गई, एकादशी का आप व्रत करते हैं उससे ये व्रत तेज होगा, जो शाम को जाकर रोटी खा लोगे। एक वक्त का व्रत भी 12 महीनों की एकादशी से बढ़कर होगा, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ व्रत है। आप तो व्रत करते नहीं, पर साधु आ गए उनको भिक्षा दे दी, अब जंगल में वो खाने के लिए कुछ नहीं, जंगल है वहां तो घर तोड़ा कुछ ले लेवे, दुकान में तो खरीद लेवे, ना दुकान है ना खाने की वस्तु है ना फल है कुछ नहीं, तो भूखा रहना पड़ता है। शाम को रसोई बनाकर पा लो प्रसाद, तो शाम को प्रसाद पाते तो एक वक्त भूखा रहना कहा था कि 12 महीनों की 24 और अधिक मास तो 26 एकादशी होती है, तो 26 एकादशी से अधिक मातम है कम मातम नहीं है, एक दिन एक टंक भूखा रहने से, क्यों कि ये भगवान का दिया हो उपवास है, आपने तो किया नहीं, आपके करने की नियत भी नहीं, भगवान की इच्छा से उपवास हुआ तो इस उपवास का ज्यादा महत्व है, अपने आप आ जाता है, वो बढ़िया चीज होती है। इधर साधा संतुष्ट हो बंदा थी तो मतरा आप से आप आ जाए। अर्जुन को यही भगवान ने कहा है, भाई ये तुम्हारे को युद्ध प्राप्त हुआ है, तुमने युद्ध किया नहीं है, तुम तो युद्ध को टालने के लिए चेष्टा करते आए हो, परंतु दुर्योधन माना नहीं, भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर उपलब्ध स्थान में ठहरे हुए थे पांडव, तो वहां से ब्राह्मण गया दूत और क्यों ने भेजा और भगवान स्वयं गए, मैं जाता हूं पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो प्रस्ताव लेकर जाते हुए वो पूछते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हारी क्या सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारी सम्मति है वे जितना ही थोड़ा ही दे दे तो वो ही ले लेंगे, पहले आधा राज्य हमारा, आधा उर्वशी दुर्योधन आदि का था, तुम्हारे दो विभाग थे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, नारे नारे हमारे राज थे, उस राज में से हमारा राज्य हमारे को दे दे, अपना राज्य अपना रखे, क्योंकि जब द्वितीय क्रीड़ा हुई जुआ खेला उस समय ये प्रण किया गया था, नियम बाधा प्रतिज्ञा की थी कि 12 वर्ष अज्ञातवास, एक अज्ञातवास, 13 वर्ष तो ये जंगल में रहे, 12 वर्ष तो चौड़े रहे, और एक वर्ष अज्ञातवास रहे, पता नहीं कहाँ है पांडव। उस एक वर्ष में अगर हम खोज लें कि ये यहाँ छिपे हुए हैं, पहचान लें, तो फिर 12 वर्ष का वनवास, और न खोज सके 13वां वर्ष ऐसा बीत जाए खोज न कर सके, तो तुम्हारा राज्य तुम्हारा, हमारा राज्य हमारा, ऐसा वचन दे चुके थे। तो हम 13 वर्ष छिप करके रह गए, आप पहचान नहीं सके, तो हमारा राज्य हमें मिले, आपका राज्य आप रखो। ऐसे अब अपनी संधि हो जाए तो अच्छी बात है, युधिष्ठिर ने कहा। अंत में कह दिया कि 5 गांव भी दे दे, हम 5 भाई हैं, एक एक गांव हम निर्वाह कर रहे थे। तो देखे तू युद्ध नहीं करता, युद्ध में कत्ल होगी, मरेंगे, क्या फायदा होगा। तो युधिष्ठिर ने ऐसे संधि का प्रस्ताव रखा, अर्जुन नकुल देव सहदेव ने भी यही रखा, भीमसेन से वही कहा, तो भीमसेन ने कह दिया संधि हो जाए तो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण बोले थे भीम तू भी संधि करता है? नहीं 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 महाराज, वो बात नहीं, हमें अब सुन लो मेरी बात, अब संधि नहीं होगी, संधि करे है तो महाराजा युधिष्ठिर करे। उसने इतनी बात विलक्षण कही, इसका वर्णन एक बैण संहार नाटक में आता है, मत नाम इस कौरव शतम समरे न यावत दुस्साहस नस्य रुधिरं नहिमाम्य रसम संचूर्णयाम गदयान सुरोधनोरम संधन करोद भवतां देवति पढ़े न। जब तक धृतराष्ट्र के 100 बेटा है, उन 100 बेटों में से एक को मैं नहीं छोड़ू, अपने हाथों 100 को मारूंगा, अगर कोई किसी को मार दे उस बेटे को तो उसको मारूंगा, मैं 100 संख्या पूरी करूंगा। ये जब पूरी न हो जाए और दुशासन की छाती चीर करके खून न पी लूं और दुर्योधन की जांघ न तोड़ दूं, तब संधि करो तो तुम्हारा राजा हमारा राजा नहीं, देश तुम्हारा राजा। भगवान ने कहा तू ऐसा कहता है, वो संधि का नहीं नहीं मैं संधि नहीं है, मेरी यही बात है। उसमें पासा खेलते थे और ऊपर दांव रखते थे, अब बाणन के पासे और बाणन की छाती है, अब तो प्राणों के तो पासे चले गए और प्राण की बाजी लगेगी। चलिए उस प्राण बाजी बाजी लगाया करता जीत हार की, तो बाणन के पासे उस प्राण की बाजी है, ऐसा भीमसेन ने कहा। द्रौपदी से पूछा भाई मैं प्रस्ताव लेकर जाता हूं तो अलग अलग तुम्हारी क्या सम्मति है? द्रौपदी महाराज बिगड़ गई, द्रौपदी ने कहा आप संधि का प्रस्ताव दे जा रहे हो, जाहु भले कुरुराज में धारी दूत परवेश पै वहां भूल न जाइयो केशव द्रौपदी केश, तो केश बताया आपने, देखो केश मेरे खुले हैं। स्त्रियों में स्त्रियों के लिए केश खुला रखना अपशुभन है, परंतु मैंने विचार कर दिया दुशासन ने मेरे केश खेचे हैं, दुशासन से खून से मेरे केश न भेज जाए तब तक मैं बैणी नहीं बांधूंगी, तो आप जाते हो संधि प्रस्ताव लेकर के तो जरा मेरे केश देख लो खुले पड़े, ये नहीं बंधेंगे जब तो दुशासन न मर जाए, ऐसा आप संधि ले जा रहे हो। बिगड़ की रोने लगी और बड़े जोर से बोली आप संधि का प्रस्ताव ले जाते हो, मैं महाराज द्रौपदी की प्यारी पुत्री पांडवों की धर्म पत्नी और तो कृष्ण प्रिया सखी, तुम मेरे सखा हो मित्र हो, आपकी प्यारी सखी हूं मैं, वे देश केस तो खुले पड़े हैं और संधि का प्रश्न हो जाए आपको शर्म नहीं आती लाज नहीं आती, आपको संधि का प्रस्ताव करते हो, मेरे केस खुले हैं ऐसी हालत है, 5 पांडवों से पुत्र मेरे पैदा हुए, 5 वे पुत्र वे युद्ध करेंगे, मेरे पिता बूढ़े वो युद्ध करेंगे, आप मत करो, पांच पांडव मत करो, सब कुछ करेंगे, संदेह करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी रो कर रो पड़ी, भगवान कहे द्रौपदी रो मत, तो चिंता मत कर, तेरे केस खुले रहने से कई स्त्रियां विधवा हो जाए, खुल केस खुल जाएगी, बहुतों के विधवा हो जाएगी, हजारों लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएगी। संधि का प्रस्ताव देकर मैं जाता हूं तो पांडवों का अपयश न हो। किन्ह ने तो पांच गांव लेकर के भी संधि का प्रस्ताव रखा, पर दुष्ट ने माना नहीं। मैं इनका कलंक धोने के लिए जा रहा हूँ, संधि होगी नहीं, अरे युद्ध होगा, क्षत्रिय मरेंगे, हजारों लाखों स्त्रियों विधवा होगी, तुम खबरा मत, संधि नहीं होगी। भगवान भविष्य की बात नहीं कहते थे, पर द्रौपदी गाड़ी कहनी पड़ी, ये दशा होगी तो क्या होती है। तो वे संधि का प्रस्ताव लेकर गए, तो ये द्रौपदी ने भीमसेन ने दोनों ने ये बातें कही, और दूसरे पांडव के संधि हो जाए तो अच्छी बात है, लड़ाई न हो तो अच्छी ठीक बात है। वहां भगवान गए, बड़ी कथा है, आप लोगों ने सुनी हुई होगा, महाभारत तो कोई परिचित अपरिचित नहीं है, बहुत सी आपने देख ही ली है महाभारत की कथा। तो वहां पर दुर्योधन नट गए, दुर्योधन ने कहा यावधि तीक्ष्ण सूच्य विद्य दग्रेण केशव, सुन लो मेरी बात, सुई लेनी तीखी, मोटी सुई नहीं, तीखी सुई का भी अग्रभाग, जितना तीखी सुई का अग्रभाग टिके इतनी जमीन में मैं नहीं दूंगा पांडवों को बिना युद्ध के। साबर कह दो जाओ, यावधि तीक्ष्ण सूच्य विद्येद अग्रेण केशव तावदपि अपरित्याजम पांड भूमेर न पांडवान प्रति, हमारी जमीन पांडव को नहीं देंगे, ठीक सुई तो व्यक्ति नहीं देंगे, जाओ। भगवान ने समझाया रे युद्ध अच्छा नहीं है, इसका परिणाम बढ़िया नहीं है, जाओ। वो मन में भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कितने हमारे बड़े बड़े वीर एक एक त्रिलोकी पर विजय कर रहे, ऐसे ऐसे हमारे पक्ष में विजय है, संधि हम क्यों करें, हम नहीं जाएंगे। तुम तो आ गए भगवान, अब युद्ध करना बिल्कुल पक्का हो गया, तो उसमें पाप लगेगा नहीं पाप लगेगा, भगवान ने उपाय बताया कि युद्ध करो, जय हो जाए तो अच्छी, पराजय हो जाए तो अच्छी, लाभ हो जाए तो अच्छी, हानि हो जाए तो अच्छी, सुख हो तो अच्छी बात, दुख हो तो अच्छी बात, इनको समान समझ कर मैं तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो पाप कहाँ होता है, ये सुख और दुख में पाप लगता है, ध्यान देना, मार्मिक बात है। हम सुखी दुखी होते हैं और पाप लगता है, और सुख दुखी न हो मस्त रहते हैं तो अमार का सुख दुख गया, पाप भी गया, और पुण्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती, कितनी विलक्षण बात है। अब सुख दुख में हर्ष करते हैं, दुख में शोक करते हैं, चिंता करते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख हो गया आने पर मन में उद्विग्न नहीं हो, और सुखेशु विगत स्पृह, सुख आ जाए तो स्प्रह नहीं मन में, आवश्यकता नहीं भी आ गया आ गया, खुशी आ गई, ये बात नहीं है। तो इन दोनों को समान समझ करो तो पाप नहीं लगेगा, कितनी विलक्षण बात है। और समत्वम योग उच्चते, गीता इस समता को योग कहती है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो कर्मों का फल है, और सुखी दुखी होना ये कर्मों का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। तो मूर्खता हम छोड़ सकते हैं, सुख दुख हम छोड़ नहीं सकते। कितने ज्ञानी महात्मा संत कोई ज्ञान हो, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी, संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता, इसको कैसे छोड़ोगे आप, कभी ठीक कभी बेठीक, कभी किसी अंश में ठीक किसी अंश में बेठीक, ये ठीक बैठीक पिंड नहीं छोड़ता प्राणी का, संसार का स्वरूप है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। तो इनको समान समझ करके, अब भगवान का विधान बांध करके और प्रसन्न रहे कि वाह प्रभु बड़ी कृपा की आपने, कल मैंने आपको आरक्षित रघु की कथा सुनाई थी। उस कथा में दुख आने पर रघु बड़ा प्रसन्न हुआ, फौज की फौज बलत्र आ गई और अकेला वो अपनी स्त्री निहत्थे हाथ में लाठी भी नहीं, और फौज आ गया सरसर सहित, तो भी महाराज वो हंस रहा वाह प्रभु वाह कैसी आपकी लीला है, ऐसी आ गई आओ आओ, खुश हो रहा है। वो मंत्री पुत्र है वो ललकार रहा है कि मेरे हृदय का धन खास ये उसको तू लिए जा रहा है, जीना चाहे तो छोड़ जा भाग जा नहीं तो अभी मारा जाएगा, ऐसे असुसली बौछार होती है। पर प्रभु क्या कहता है, बड़ा 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 अन्नपूर्णा स्त्री को घबरा रही कि अब क्या दशा होगी, हमारे पास कोई अस्त्र ना शस्त्र कुछ नहीं, ना फौज दिन पलट नहीं, भारी इतने असर आ गए। रघुनाथ कहता है प्रिय दुखी होती हो, घबराती हो, डरती हो, भगवान के रहते हो डर क्या है, होने दो जो भगवान भेजे होने दो, जहर खा चुका था उसे अनुभव कर लिया था तो भगवान की कृपा है, तो उसे दुख सवार आ गए, तुम कौन हो कहाँ जा रहे हो, ये कौन है तुम्हारा, इनको हम नहीं जानते, हम तो अपने मार्ग जा रहे हैं, भगवान की पुरी जा रहे हैं, कन्या जगह सुरक्षा होगी, कल सुनिए करा, तो कितनी विलक्षण बात, दुख में रघु खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, निहत्थे साफ स्त्री पुरुष उन पर आगमा पाई ना अनित्या, आने जाने वाले हैं अनित्य है, ये रहने वाले नहीं है, ना तो संसारी सुख रहता है ना संसारी दुख रहता है, तो सुख दुख से दोनों से रहित महान आनंद होता है। जैसे हमारे यहाँ कभी रात आती है कभी दिन आता है, पर सूरज में रात नहीं आती है, सूरज में रात कैसे आओ, सूरज जाए वहां रात नहीं आती, तो सूरज में खुद में रात कैसे आवेगी, तो वहां हरदम प्रकाश हरदम मिल रहता है, तो सूर्य भगवान में दिन होता है, रात दिन दो नहीं होते। ऐसे ही अज्ञान में फंसे हुए जीवों को दिव्य सुख और दुख दो होते हैं, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद आनंद होता है, उसे जोड़ी का दुख नहीं है, सुख के दूर दूर दुख है, सुख दुख ही समय करता, तो दूर दूर समय करने से एक आनंद होता है, उसमें दुख का नाम निशान नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, ऐसे पद पहुंचने पर ऐसी होती है, तो उसका मार्ग है ये सुख दुख है समय कृत्वा। जैसे बद्री नारायण जाने वालों के लिए सुखदायी रास्ता और दुखदायी रास्ता दोनों ही मार्ग है, अब मार्ग में ठहरना नहीं है, ना कोई कठिन मार्ग में ठहरना है ना शुभ मार्ग में ठहरना है, हमें तो चलना है अपने बद्री नारायण की तरफ, वहां जाना है, ये है। तो जो योगी पुरुष होते हैं, जो साधक होते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, वो सुखी दुखी नहीं होते। आगमा पाएगा अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, यहाँ डरत हो लगे, मौज में कितनी आनंद की बात है, ये तो साफ अपने आप रहना है ऐसे ही। तो सुख दुख को समान समझो, क्योंकि सुख दुख समान है और दोनों आने और जाने वाले हैं, ना रहने वाला सुख है ना जाने वाला रहने वाला दुख है। आपके घरों में घर में मनुष्य मरते भी हैं और जन्मते भी हैं, ये आपने नहीं देखा है, ये तो देखी हुई बात है। तो जन्मने वाला जन्मता है, मरने वाला मरता है, अगर उसमें क्षमता रखो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, और सुखी दुखी होते रहोगे तो पशुओं की तरह सुखी दुखी होते ही रहो, जन्मते मरते मरते जन्मते रहो, पार नहीं पा सकते इसका, क्योंकि लंबा रास्ता होता है उसका तो पार हो जाता है, वो तो अंत आ जाता है, परंतु गोल रास्ता हो उसका पार नहीं आता। जैसे कोलू का बैल है, उम्र भर चले उम्र भर, अरे वहां का वहीं रहा, कहीं गया गया, मर गए के जन्मो के जन्म गए के मरु, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरु, ये कोई अंत होता है इसका? और सुख दुख के समय कर लो तो जन्म मरण मिट जाए। इस वास्ते सुख दुख में समान हम नहीं होते हैं, तभी तो कहते हैं सुख दुख में समर रहो। अगर समुद्र में सुखी रहते, एक समान रहते तो हमारे उपदेश की जरूरत क्या थी? शिक्षा की जरूरत तो तभी होती है जब हम उनको वैसे समान नहीं रहते हैं, तब कहते हैं रहो। अगर हमारे समान नहीं होता तो उपदेश की जरूरत नहीं थी। ऐसे तत्व ज्ञान महात्मा के लिए उपदेश की जरूरत नहीं है, उपदेश सब अज्ञानी के लिए होता है। ये शास्त्र और व्याख्यान शिक्षा सब अज्ञानियों के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है, ये सिखाने के लिए नहीं है, उनके लिए कोई उपदेश नहीं है। उपदेश क्या दे, वो तो प्राप्त कर चुके। भाई पढ़ाई करती है, जब अधूरी पढ़ाई होती है पूरी पढ़ाई कर ली, बस पूरे हो गए, आचार्य हो गए, एमए हो गए, एलएलबी हो गए, अब क्या पढ़ना होगी, पढ़ाई पूरी हो गई। इस तरह से दोनों से ऊंचे उठ जाओ तो आनंद में रहो, सब काम ठीक हो गया। तो सुख दुख को समान समझना इस रीति से है। अब इसमें कोई खास शंका हो गई तो पूछ लो, इसमें कोई संदेह रहा हो, शंका रही हो तो आप पूछो। सुख दुख को समान कैसे समझे, तो पहले से मैंने समान बता दिया, समान है दोनों। पीछे बता दिया कि ये मार्ग के सुख दुख है, हमारा लक्ष्य सुख भोगना नहीं है, हमारा लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति है। तो उस मार्ग में सुख दुख आते हैं, इसमें हमें अटकना नहीं है, हमें तो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। इस बार समान देकर चले तो समर्थम योग उच्यते, योग का अभ्यास योगी होना है, ये गीता का कहना है। अब एक तीजा पुरजा आया, उसकी बात सुना। तीन पत्रार प्रश्न आया मेरे, दो प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न में कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं तो नामापराध भी होता है। अब कृपया ये साधन बताएं कि नामापराध न हो, नाम अपराध होता है। हम राम 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 कृष्ण गोविंद हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे हम जपते हैं तो जप करते हुए नाम लेते हैं, अपराध होता है। जब तक नामा अपराध होते हैं तब तक नाम का पूरा फल नहीं होता, तो अपराध क्या है और कैसे दूर हो, ये प्रश्न आया है। तो एक श्लोक आता है कि नाम है उसमें क्षमता है, उसमें क्षमता की बात है। सन्निंदा सतनाम वैभव कथा श्री शेष जो भेद भी रस श्रद्धा श्रुति शास्त्र देश विराम नाम्यर्थवाद भ्रम नामास्तित सिद्ध वृत्ति भेद त्यागो भी धर्मांतर साम्यम नाम जपे शिवश्च हरे। चाहे शिव जी का नाम जपे चाहे विष्णु का नाम जपे, ये दस अपराध है। इस वास्ते राम राम सब कोई कहे, दस रित कहे न कोई, एक बार दस रित कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। दस रित मन दस अपराधों से रहित नाम जपा जाए तो उसका बहुत विशेष फल होता है। ऐसे नाम के अपराध दस है, वो अब सुन लो बतावे। हम नाम जप करते हैं और संतों की निंदा भी कर देते हैं, शास्त्रों की निंदा भी कर देते हैं, शास्त्रों की मर्यादा की निंदा कर देते हैं, ये नाम का अपराध होता। नाम महाराज आपको फल देते हैं, पर नाम लेने वाले संत महात्मा, नाम का माध्यम बताने वाले शास्त्र, उन पर आप दोष दृष्टि करते हैं, ये नाम अपराध होता है, नाम का अपमान होता है। क्योंकि नाम जाने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और नाम की मेहनत वाले शास्त्र होते हैं, उनकी निंदा करो तो संनिंदा एक अपराध। अशुद्ध नाम वैभव कथा जो नाम पर श्रद्धा नहीं रखते, नाम की निंदा करते हैं, नाम का अपराध करते हैं, ऐसे पुरुषों को नाम का उपदेश देना, तुम नाम करो, नाम जपो, तो नाम का अपराध होता है। वो ग्राह की नहीं है, वो बेचारे क्या जाने, मूंगफली खरीदने के लिए जाए और उनमें कहते ये तो 1,25,00,000 का रतन बड़ा सुंदर है, अरे हमारे मूंगफली चाहिए, अब रतन वो क्या करे, ये बड़ा रतन है, उनकी अपराध है। ऐसे जो नाम को नहीं समझते उनको नाम की महिमा कहना, ये नाम का अपराध होता है। नाम का अपराध भी समझते हो, जिसे उनको कहते हो जो अपराध करने वाले, नाम जपड़े वाले नहीं है, उल्टे चलने वाले हैं, तो सन्निंदा सतनाम वैभव कथा दो। और श्रीशेष और भेद भी भगवान विष्णु में और शंकर में भेद बुद्धि करते हैं। शंकर का नाम करते हैं, विष्णु की विष्णु भक्तों की निंदा करते हैं, और वैष्णव है विष्णु भगवान की प्रशंसा उपासना करते हैं, और शिव जी के शिव भक्तों की निंदा करते हैं। नाम अपराध होता है, उसको नाम फलीभूत नहीं होता। शिव और विष्णु दो नहीं है, एक ही है। उभयो प्रकृतिस्त्वे का तृप्ते भेदे भिन्न विभाति हरिहर भेदम बिना शास्त्रम। तो हरि हर ही क्या है, हर और हरि दोनों की प्रकृति स्त्रे का हिरी हर धातु तो एक है भाई, प्रत्यय भेद प्रत्यय भिन्न भिन्न होगा, एक हरि हो गया एक हर हो गया, तो भिन्न भिन्न देखते है। उभयो प्रकृति शिव और भगवान विष्णु में प्रकृति एक है, उनका स्वभाव एक है, दया करने वाला, पर तुम्हारा निश्चय अलग अलग है, प्रत्यय भेद भिन्न भाती भिन्न देखते हुए जो अलग देखते हैं निंदा करते हैं, वो बिना शास्त्रम शास्त्र को नहीं जानते, व्याकरण नहीं जानते, व्याकरण जानते नहीं कहते, और जो भगवान शंकर और विष्णु में कहते हैं वो बिना शास्त्रम विनाशाय अस्त्रम बिना शास्त्रम, विनाश करने के लिए अस्त्र है ये, निंदा करो तो विनाश हो जाएगा। वो योग का भिन्न प्रत्ये भेदे भिन्न वादी भादी कलयति कश्चन मूढ़ा हरिहर भेदम बिना शास्त्र, ये विनाश का आश्रय है, अपना पतन करने वाला है। भगवान शंकर में विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए, कोई शंकर की उपासना करे कोई विष्णु की उपासना करे, वही भगवान की उपासना है। रुचि नाम वे चेत्रिया ऋषि कुटलाना पथ दुषाम अनेक तरह के मार्ग है, रुचि अलग अलग है। भर्तृहरि ने कहा है तयो रभेद प्रतिपत्ति रस्ते में, भगवान विष्णु और शंकर में हमारे भेद बुद्धि नहीं है, वे भी बड़े कृपालु है, शंकर भी और विष्णु भी, परंतु तथा भक्ति तरुणेन्दु शेखरी, तो हमारी भक्ति तो शिव जी में है, हम तो शेव है, तो हमें कोई दोष नहीं है, परंतु निंदा करो दोष हो गया, विष्णु भगवान की निंदा करे ये गलती है, या वैष्णव होकर के राम 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 करे शिव शिव न करे तो कोई दोष नहीं, पर शिव जी को नीची दृष्टि से देखे उसकी निंदा करे तिरस्कार करे तो नाम का अपराध हो जाएगा। तो संनिंदा सदनाम भेद कथा श्री शेष और भेद भी अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देश गिरा, वेद की और शास्त्र की और संत महात्माओं की जो वाणी है उसमें संदेह करे तो तीन अपराध हो जाता है। वेद की निंदा करे तो वेद की निंदा अपराध हो जाएगा, वेद की निंदा करने वाले नरकों में जाते हैं। ऐसे शास्त्रों की निंदा, वेद भगवान से दूसरे नंबर में शास्त्र आते हैं, तीसरे नंबर में संत महात्मा आते हैं, तो इसके अश्रद्धा करे विश्वास, वेदों पर विश्वास नहीं, शास्त्रों पर विश्वास नहीं और संत महात्मा अनुभवी उन पर विश्वास नहीं, तीन ये विश्वास ये तीन हो गए, छह हो गए। और सातवां है नाम्यर्थवाद ब्रह्म, नाम में जो नाम की महिमा गई है ये लोगों को लगाने के लिए झूठी बातें दिखती, नाम में इतनी शक्ति नहीं है, ऐसा जो भ्रम हो जाए मन में, आपके मन में जस जाए कि नाम की महिमा केवल लगाने के लिए कही गई है, वास्तव में नाम की महिमा नहीं है, ऐसा आप मान लेते हो तो ये नाम की निंदा होती है। तो ये सातवां हो गया। और अगाड़ी कहते हैं कि नामास्तीत निषिद्ध मिलते, आठवां नाम जपते हैं क्या अर्थ है, नाम की महिमा में आया है कि नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, भगवान के नाम में पाप नाश करने की इतनी शक्ति है जितने पाप पापी से पापी भी कर ही नहीं सकता, इतने पापों की नाश शक्ति है, तो कितने ही पाप और सब पापों का नाश करने की शक्ति नाम में है। मनुष्य पापी से पापी भी इतने पाप कर नहीं सकता, उतने पापों के नाश करने की शक्ति नाम में है। ये सुनो कोई कह देखो ये पति झूठी का पपा नहीं, नाम कैसे हो जाएगा, ऐसे जो मानते हैं वे नाम का अपराध करते हैं, अश्रद्धा विश्वास नाम्यर्थवाद प्रभा नामास्ती निषिद्ध करते। नौवां है कि नाम जपते हैं तो पाप कर लेंगे, आगे इतने पाप कर ही नहीं सकता, तो बस ये पाप कर दो, इसको मार दो, इसको दुष्ट कर दो, नष्ट कर दो, सॉरी कर दो, अब हम अन्याय कर दो, फिर राम 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 कर लेंगे, उसको नाम अपराध होता है, उससे नाम उसको फलीभूत नहीं होता। एक हमने बात सुनी है, एक गवर्नमेंट का अच्छा काम करने वाला सज्जन था, उसको ये अधिकार दिया गया कि कहीं किसी की फांसी की सजा हो जाए और वो जाकर खड़ा रह जाए, कुछ नहीं बोले, खड़ा रह जाए तो फांसी नहीं होगी, उसके सामने फांसी नहीं होगी, और टल गया समय पर सजा के लिए बच गए, इतना अधिकार दिया हुआ था। तो उस अधिकार को लेकर के उसी की बेटी ब्याही गई, वो दामाद था, वो पाप करने लगा, अन्याय करने लगा कि हमारे ससुर इतने प्रभावशाली है कि अपराधी को फांस दे वहां चले जाते फांसी नहीं होती, तो अपनी बेटी को विधवा थोड़ी होने देंगे, करने लगा पाप, अन्याय चोरी डकैती मारपीट करने लगा, करने लगा तो अंत में कई बार कैद हुई, अंत में फांसी का हुक्म हुआ, तो इसको इतने आदमियों को मार दिया, कत्ल कर दिया, फांसी दे दी जाए। तो हुक्म होने पर अपनी स्त्री से कहने लगा तो अपने पिताजी को कह दे तो मेरे याद है मेरी फांसी चल जाए। उसने कहा कि पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी, राज से हुक्म हो गया है फांसी का, अगर वो मर जाए आप समझ मैं तो विधवा हो जाऊंगी तो आपको दया नहीं आती। वो बोले बेटी विधवा आज नहीं हो तो कल परसों फिर हो जाएगी, वो ऐसी उद्दंडता करते मैं फांसी कहां तक चढ़ूंगा, और मेरे को जो फांसी न होता ये ऐसा अधिकार मिला है तो उस अधिकार का दुरुपयोग करूं, मेरा दामाद है उसके लिए मैं जाऊं, मैं नहीं करूंगा। निरपराध को कहीं फांसी होती हो पता लग जाए कि इसको मुकदमा झूठा है तो मैं वहां जाऊंगा। तो ये पाप नाम के भरोसे पाप किया जाए उन पापों का नाम नाश नहीं करता, नाम का भरोसा लेके नाम है ही हमारे पास, कर दो पाप अन्याय करो राम राम कर लेंगे, उसके पाप नष्ट नहीं होते, तो वो भी नाम का अपराध है। और विहित कर्म का त्याग श्राद्ध है तर्पण है शुभ काम है नहीं करें नाम लेते हैं, तो विहित कर्म का त्याग निषिद्ध का आचरण ये दश हो गए, नामापराधा दश। ये भगवान विष्णु का हो चाहे भगवान शंकर का हो कोई नाम लिया जाए ये दश अपराध है, दश अपराध न बने, ये अपराध कोई से हमारे न बने, और नाम जप करें तो नाम की महिमा बिल्कुल प्रकट होती है, कोई संदेह नहीं है। तो ये पूछा भी अपराध कौन से, और नाम नर्थवाद भ्रमा ये साथ हो गए, नाम आस्तित निषिद्ध वृत्ति पाप करना भरोसे, और विहित कर्म का त्याग करना ये दश अपराध हुए, नाम के अपराध है ये न करके और सीधे सरता से भगवान का नाम ले उसको पूरा महत्व मिलता है, तो दश अपराध में बचते उन पाप करे। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे वो दशरथ, दस अपराशों से रहित नहीं कहते, एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ करेंगे, इतना उसका महत्व है। तो ये अपराध न करे भगवान का नाम ले। नारायण 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 नारायण।